एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों के दिलों को छुआ है और संस्मरण लिखने के अंदाज को शायद हमेशा के लिए बदल दिया।
हाँ,
फ्रैंक मैकॉट की एंजेला की राख,
एंजेलाज एशेस।
बिल्कुल, 1996 में आई थी ये किताब और आते ही मतलब छा गई।
हाँ, इसे 1997 में पुलित्जर पुरस्कार भी मिला, जो अमेरिका में साहित्य का, पत्रकारिता का बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है।
हाँ, बहुत बड़ा। और देखिए, ये किताब महज एक कहानी नहीं है, ये फ्रैंक मैकॉट की अपनी जिंदगी का कड़वा सच है। वो एक आयरिश अमेरिकन लेखक थे और शिक्षक भी। 1930 में जन्म, 2009 में गुजरे।
अच्छा।
और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा कि जन्म तो न्यूयॉर्क में हुआ था, ब्रुकलिन में।
हाँ, आयरिश माँ बाप के घर।
लेकिन किस्मत देखिए, बचपन में ही आयरलैंड के लिमरिक शहर पहुंच गए, और वो भी कब, महामंदी के दौर में।
बिल्कुल, जब पूरी दुनिया भयानक आर्थिक तंगी से गुजर रही थी, और वहाँ वहाँ उन्होंने ऐसी गरीबी देखी जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते।
और मुझे लगता है यही बात इस किताब को आज भी इतनी जरूरी बनाती है ना। ये सिर्फ अतीत का कोई दस्तावेज नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है इंसान के टिके रहने की, उसकी हिम्मत की, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी।
हाँ, 20वीं सदी के मध्य का आयरलैंड, वो भयानक गरीबी, शराब की लत से टूटते परिवार, और इन सब के बीच एक बच्चे का बड़ा होना।
हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ फ्रैंकी या आयरलैंड की कहानी नहीं रह जाती, ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जो, मतलब, नामुमकिन हालातों के बावजूद अपनी पहचान, अपना सम्मान, अपने सपने, उनको बचाने की कोशिश करता है।
सही कहा। और ये भी दिखाती है कि कैसे गहरे जख्मों को, निजी त्रासदियों को कला में बदला जा सकता है।
सोचिए जरा, 60 साल से ज्यादा उम्र में उन्होंने अपने बचपन की इस दर्दनाक कहानी को दुनिया के सामने रखने की हिम्मत जुटाई, और आज ये दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे प्रभावशाली संस्मरणों में गिनी गाती है।
तो चलिए, फ्रैंक मैकॉट के जीवन के सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। शुरुआत होती है ब्रुकलिन से, महामंदी का साया।
हाँ, माता पिता एंजेला और मिलाची मैकॉर्ड आयरलैंड से आए अप्रवासी।
पिता का किरदार बड़ा दिलचस्प लगता है, मैलाची सीनियर।
दिलचस्प और दुखद भी। वो बातें बनाने में माहिर थे, आयरिश इतिहास के किस्से खूब सुनाते थे, लेकिन शराब की लत बहुत बुरी थी।
तो नौकरी टिकती नहीं होगी।
बिल्कुल नहीं, और जो भी थोड़ी बहुत कमाई होती वो शराब में चली जाती, बच्चों का पेट खाली, बहुत मुश्किल हालात थे।
और माँ एंजेला, उनका क्या रोल था?
एंजेला, वो हिम्मत और लाचारी का एक अजीब मिश्रण थी। मतलब, बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार, लेकिन खुद भी गहरी उदासी और निराशा में डूबी रहती थी।
और ब्रुकलिन में ही उनकी एक बेटी की मौत भी हो गई थी।
हाँ, छोटी बहन मार्गरेट की। और इसी दुखद घटना के बाद परिवार ने फैसला किया कि वो आयरलैंड वापस जाएंगे।
फ्रैंक तब बहुत छोटे होंगे।
हाँ, करीब 4 साल के, जब वे लिमरिक पहुंचे, और जो पिता की कहानियों वाला रोमानी आयरलैंड था वो कहीं नहीं था।
सामने क्या था?
सामने थी कठोर सच्चाई, बेरोजगारी, चर्च का सख्त रवैया, और ऐसी गरीबी जो हाड़ कंपा दे।
उनके रहने की जगह का जिक्र भी बड़ा भयानक है, वो लेन हाउस।
अरे हाँ, तंग गली में बनाए खस्ता हाल मकान, नीचे के कमरे में अक्सर बारिश का पानी भर जाता था, और पास में जो सामुदायिक शौचालय था उसका गंदा पानी भी।
बाप रे।
वो मजाक में उसे इटली कहते थे, और पूरा परिवार ऊपर वाले ठंडे सीलन भरे कमरे में रहता था। उसे वो आयरलैंड कहते थे, उसी में सब सिकुड़ कर रहते थे।
ये माहौली अपने आप में किरदार जैसा लगता है, वो लगातार होती बारिश, गरीबी और चर्च का रोल।
हाँ, कैथोलिक चर्च का बहुत दबदबा था, वो डर भी दिखाता था, और कभी कभार, मतलब, थोड़ी बहुत मदद भी कर देता था सेंट विंसेंट डी पॉल सोसाइटी से।
और दुख यहीं खत्म नहीं हुए थे।
नहीं, फ्रैंक के जुड़वा भाई थे ओलिवर और यूजीन, उनकी भी बचपन में ही मौत हो गई, निमोनिया और कुपोषण से। इन सब ने फ्रैंक और उनकी माँ एंजेला पर बहुत गहरा असर डाला, बहुत ज्यादा।
और पिता, उनका रवैया वैसे ही रहा?
हाँ, वही सिलसिला, कहीं काम मिला, घर में थोड़ी उम्मीद जगी, पहली तनख्वाह आई, और वो शराब में डूब गई, उम्मीद फिर टूट गई। ये उनके बचपन का एक बहुत दर्दनाक, लगातार चलने वाला हिस्सा था।
फिर स्कूल जाना शुरू हुआ, लीमी नेशनल स्कूल।
हाँ, जिसे सख्त ईसाई ब्रदर्स चलाते थे, वहां भी गरीबी का एहसास पीछा नहीं छोड़ता था। कपड़े फटे हुए, दोपहर के खाने के लिए डब्बा खाली,
लेकिन कुछ उम्मीद की किरणें भी मिली शायद, शिक्षक वगैरह।
हाँ, कुछ अच्छे शिक्षक भी थे, जैसे एक थे जिन्होंने उनकी कल्पना, सोचने की शक्ति को बढ़ावा दिया। एक और थे श्री ओ हेलोरन, जिन्होंने सिखाया कि भाई सत्ता पर सवाल उठाना, अपनी सोच रखना जरूरी है।
लेकिन असली पढ़ाई शायद क्लास के बाहर हुई, लाइब्रेरी का जिक्र आता है।
बिल्कुल, फ्रैंक ने लाइब्रेरी में किताबों की एक पूरी नई दुनिया खोजी। और फिर एक और अहम घटना हुई, 10 साल की उम्र में उन्हें टाइफॉइड हो गया।
अच्छा।
अस्पताल में लंबा रहना पड़ा, लेकिन वहां उन्होंने पहली बार गरीबी से अलग एक दुनिया देखी। साफ बिस्तर, रोज खाना, ये उनके लिमरिक वाले घर से कितना अलग था।
और वहीं उनकी मुलाकात पेट्रिशा मेडिगन से हुई थी।
हाँ, एक लड़की थी जो डिप्थीरिया से मर रही थी। उसने फ्रैंक को अल्फ्रेड नॉइस की एक मशहूर कविता है द हाईवे मैन, उससे मिलवाया, शेक्सपियर से मिलवाया।
तो ये जिंदगी में पहली बार खूबसूरती और मौत का, कला की ताकत का एहसास था एक तरह से।
बिल्कुल, साहित्य एक पनाहगाह बन गया। और वहीं उन्होंने जोनाथन स्विफ्ट का ए मॉडेस्ट प्रपोजल पढ़ा। उसे पढ़कर उन्हें शायद पहली बार लगा कि आयरलैंड की गरीबी के बारे में भी लिखा जा सकता है, उसकी कहानी कही जा सकती है।
फिर बड़े होने पर उन्होंने कई तरह के काम किए।
अजीब अजीब काम, कोयला ढोया, टेलीग्राम पहुंचाए जिससे दूसरों की जिंदगियों की झलकियां मिली। एक साहूकार औरत थी श्रीमती फिन्यूकेन, उसके लिए उधार न चुकाने वालों को धमकाने वाले खत भी लिखे।
बापरे, मतलब जिंदा रहने की जद्दोजहद थी।
हाँ, सीधी सी बात है, मासूमियत छीन ली इन सबने, दुनियादारी से खा दी।
और फिर एक बड़ा मोड़ आया जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उनके पिता इंग्लैंड चले गए।
हाँ, काम करने गए थे, वादा किया कि पैसे भेजेंगे, लेकिन हमेशा की तरह शराब पी गए। ये शायद आखिरी धोखा था।
तो जिम्मेदारी फ्रैंक पर आ गई।
बिल्कुल, वो किशोर ही थे तब, लेकिन उन्हें ही घर का आदमी बनना पड़ा। अपनी माँ और छोटे भाइयों मेलाची जूनियर, माइकल, एल्फी, उनका पेट पालने की जिम्मेदारी उन पर आ गई।
ये तो बहुत बड़ी बात है।
हाँ, और फिर उन्होंने छोटे मोटे काम किए, अखबार बेचे। उन पैसों से जब घर के लिए खाना लाते थे तो उन्हें शायद पहली बार लगा कि वो सिर्फ हालात के शिकार नहीं है, वो कुछ कर सकते हैं।
और मन में एक ही लक्ष्य बैठ गया।
हाँ, बस एक ही धुन सवार हो गई, किसी भी तरह पैसे जमा करके अमरीका भागना है। यही उनकी कहानी का, कह सकते हैं, इंजन बन गया।
लिमरिक में उनके आखिरी साल इसी कोशिश में बीते।
हाँ, लगातार उसी लक्ष्य के पीछे भागते रहे। और फिर वो घटना हुई, उनकी जो नियोक्ता थी साहूकार श्रीमती फिन्यूकेन, उनकी मौत हो गई। फ्रैंक ने ही उनका शव देखा और हताशा में उन्होंने उसकी बचाई हुई रकम चुरा ली।
ये तो बड़ा नैतिक संकट रहा होगा।
जाहिर है, मन में अपराध बोध तो था, लेकिन अमरीका जाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो मिल गया।
और फिर वो निकल पड़े 19 साल की उम्र में।
हाँ, एक अजीब सा एहसास था, दुख की जड़ को पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन अपने परिवार को भी तो उसी दुख में छोड़कर जा रहे थे। खट्टा मीठा सा।
वो न्यूयॉर्क बंदरगाह पर पहुंच के क्या देखा उन्होंने? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी?
नहीं, उन्होंने उम्मीद तो यही की थी, लेकिन उन्हें एक पादरी दिखा जो एक जवान लड़की को आशीर्वाद दे रहा था। और पास खड़े एक अमरीकी ने कहा, "'Tis the land of opportunity."
ये अवसरों की धरती है।
हाँ, और फ्रैंक ने सोचा कि पिछला जीवन बस एक कहानी थी, अब एक नई कहानी शुरू हो सकती है, और किताब यहीं खत्म होती है, उस एक शब्द पर, टिस।
जो उनके अमेरिका आगमन और उनकी अगली किताब टिस के शीर्षक दोनों का इशारा है।
बिल्कुल।
और अमेरिका में उनकी कहानी आगे बढ़ी, फौज में गए, फिर GI बिल से पढ़ाई की।
हाँ, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़े, और फिर 30 साल तक, सोचिए 30 साल तक न्यूयॉर्क के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया।
और रिटायरमेंट के बाद 60 साल की उम्र में उन्होंने एंजेला की राख लिखी।
और लिखते ही दुनिया भर में मशहूर हो गए, पुलित्जर मिला, 2009 में उनका निधन हुआ।
उनकी विरासत बहुत गहरी है।
बहुत ज्यादा, उन्होंने संस्मरण लिखने का तरीका ही बदल दिया। मजदूर वर्ग, आप्रवासी लोग, उनके अनुभवों को आवाज दी। आयरलैंड की जो एक बनी बनाई रोमांटिक छवि थी, उसे तो तोड़ा।
हाँ, वो मुश्किल हालात में जीने की कला, कहानी कहने की ताकत, शिक्षा का महत्व, इन सब का प्रतीक बन गए।
और सबसे बड़ी बात, इतनी कड़वाहट झेलने के बाद भी उन्होंने आखिर में करुणा को चुना, नफरत को नहीं।
ये तो हुई उनकी कहानी, पर इस कहानी के पीछे का इंसान कैसा था? उनकी सोच क्या थी? उनके मूल्य क्या थे? इतनी भयानक गरीबी में पलने बढ़ने का उनके नजरिए पर क्या असर पड़ा होगा?
जाहिर है, उनका जो दुनिया को देखने का नजरिया था, वो उसी गरीबी में घड़ा गया था। उसमें एक तरह का कह सकते हैं यथार्थवादी संघर्ष था, प्रैग्मैटिक सर्वाइवलिज्म, बस किसी तरह जिंदा रहना है। और साथ ही जीवन की जो बेतुकी और दुखद स्थितियां होती हैं उसका भी गहरा एहसास था, ट्रैजिक अब्सर्डिटी। वो अक्सर भगवान और संतों को याद करते थे पर मदद शायद ही कभी मिलती थी। चर्च बड़े वादे करता था पर दुनिया की तकलीफें कम नहीं होती थीं।
लेकिन इन सब के बीच भी एक गरिमा थी।
हाँ, उनका एक मूल दर्शन था, गरिमा के साथ सहन करना, डिग्निफाइड एंड्योरेंस। मतलब हालात कितने भी बुरे हों, इंसान का जो अंदरूनी मूल्य है वो खत्म नहीं होता।
और भाषा, कहानियां, किताबें, ये उनके लिए सिर्फ टाइम पास नहीं थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उनके लिए एक तरह का प्रतिरोध था, हथियार था। अराजकता और निराशा के बीच भाषा और कहानी के जरिए वो दुनिया में अर्थ ढूंढने की, सुंदरता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। किताबें उनके लिए भागने की जगह भी थी और आंखें खोलने वाली सच्चाई भी, शरण भी, रहस्य उद्घाटन भी।
धर्म के साथ उनका रिश्ता भी काफी जटिल लगता है।
हाँ, बहुत पेचीदा। उन्होंने जो संगठित कैथोलिक धर्म था उसकी कई बातों को खारिज किया, खासकर वो सोच जो गरीबों को ही उनकी हालत के लिए दोषी ठहराती थी। लेकिन उनमें एक गहरी आध्यात्मिक संवेदनशीलता बनी रही। वो इंसानी रिश्तों में, कला में, दयालुता के छोटे छोटे पलों में कुछ पवित्र जैसा महसूस करती थीं। वो हर तरह की सत्ता पर शक करते थे, सवाल उठाते थे, लेकिन इंसानी दुख दर्द के लिए उनके मन में गहरी हमदर्दी थी।
क्या चीज थी जो उन्हें आगे बढ़ाती रही, लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए, क्या मकसद था?
उनकी ये समझना और समझाना। वो उन अनगिनत भूले बिसरे गरीबों का सम्मान करना चाहते थे जिनकी कहानियां कभी कही नहीं गईं, उनके अपने भाई, उनके पिता, लिमरिक के वो सब लोग।
हाँ।
दूसरा, पढ़ाने को लेकर उनका जुनून। वो मानते थे कि शिक्षा ही गरीबी से निकलने का रास्ता है। वो दूसरों को सोचने और महसूस करने की आज़ादी देना चाहते थे, बौद्धिक और भावनात्मक मुक्ति के औजार देना चाहते थे,
और शायद एक जिम्मेदारी का एहसास भी, गवाही देने का।
बिल्कुल, कि जो हाशिए पर धकेल दिए गए लोग हैं उनके अनुभवों को भुलाया ना जाए, उन्हें रोमांटिक ना बनाया जाए, स्मृति को जिंदा रखना और उसमें से सार्वभौमिक सच निकालना।
और मुश्किलों का सामना उन्होंने कैसे किया, क्या तरीका था उनका?
उनमें एक अजीब सा मिश्रण था, आयरिश लोगों वाली सहन शक्ति और अमेरिकी आशावाद। वो मानते थे कि मुश्किलें ही इंसान की असली ताकत सामने लाती हैं।
उनका हास्य बोध भी कमाल का था, काला हास्य।
हाँ, डार्क ह्यूमर। वो उनका हथियार भी था और ढाल भी। भयानक स्थितियों पर भी हंस सकते थे या हंसा सकते थे, ये खुद को बचाने का एक तरीका था। इसके अलावा अटूट इरादा और एक चीज और जिसे हम कह सकते हैं, सजग साक्षी बनना।
मतलब
जो हो रहा है उसे ध्यान से देखना, महसूस करना, जैसे जानकारी इकट्ठा कर रहे हो ताकि बाद में उसे समझ सकें, कला में ढाल सकें। और हाँ, जिंदा रहने के लिए जो जरूरी था वो करने से हिचकिचाए नहीं, प्रैक्टिकल ऑपर्चुनिज्म कह सकते हैं, भले ही वो नैतिक रूप से कितना भी मुश्किल क्यों ना हो।
इस पूरी कहानी में, इस पूरे जीवन में कुछ पल ऐसे हैं जो वाकई उनकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। आपको कौन से तीन मोड़ सबसे अहम लगते हैं?
चुनना मुश्किल है, पर मेरे हिसाब से पहला निर्णायक मोड़ था आयरलैंड वापस लौटना।
हाँ, वो 4 साल की उम्र में।
हाँ, वो ब्रुकलिन की जो भी टूटी फूटी उम्मीदें थीं उनसे सीधे लिमरिक की हताशा में गिरना था। इसी ने उनके जीवन के सबसे बड़े संघर्ष की नींव रखी, वो गरीबी, वो बेगानेपन का एहसास, और फिर किसी भी तरह वापस अमेरिका जाने की वो छटपटाहट।
बिल्कुल। और दूसरा, मुझे लगता है वो टाइफाइड के कारण अस्पताल में बिताया गया वक्त होगा।
हाँ, सही पकड़ा। वो मौत के मुंह से निकलकर जैसे विचारों और साहित्य की दुनिया में पहुंच गए। वो साफ सफाई का अनुभव, पेट्रिशिया मेडिगन से मिलना, कविता और शेक्सपियर को जानना, ये सब वहीं हुआ। इसने उन्हें दिखाया कि गरीबी से परे भी एक दुनिया है जहां खूबसूरती है, कला है।
और शायद लेखक बनने का पहला बीज वहीं पड़ा।
हाँ, कह सकते हैं। और इसने अमेरिका भागने की इच्छा को और पक्का कर दिया, वो मन एक महल है वाला विचार।
और तीसरा मोड़ भी उतना ही महत्वपूर्ण लगता है, जब उनके पिता इंग्लैंड गए और फिर कभी ढंग से पैसे नहीं भेजे और फ्रैंक को घर संभालना पड़ा।
हाँ, वो पल जब उम्मीद का आखिरी धागा भी टूट गया, उन्हें समझ आ गया कि कोई बचाने नहीं आएगा, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा।
बचपन वहीं खत्म हो गया एक तरह से।
बिल्कुल, उन्हें वयस्कता और घर के मुखिया की भूमिका में धकेल दिया गया। पिता के लिए मन में जो थोड़ी बहुत इज्जत बची थी वो भी शायद चली गई, और इसने उनके इरादे को और मजबूत किया कि वो अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, अपने पिता की गलतियों को नहीं दोहराएंगे।
फ्रैंक मैकॉर्ड के जीवन से हम आज क्या सीख सकते हैं?
बहुत सारी बातें, जाहिर है।
बिल्कुल।
सबसे पहले तो ये कि इंसान मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिक सकता है, वो जिजीविषा, रेजिलियंस।
हाँ।
और दूसरी, अंधेरे में भी हास्य ढूंढना, ये सिर्फ मजाक नहीं, जिंदा रहने का एक तरीका है।
सही कहा।
ये कहानी ये भी दिखाती है कि गरीबी कैसे कैसे परिवारों को अंदर से खोखला कर सकती है, और पारिवारिक रिश्ते कितने जटिल होते हैं, खासकर जब माँ बाप मिलांचली जैसी खामियों से भरे हों।
उनसे प्यार भी होता है, नफरत भी, शर्म भी आती है, और दया भी, सब कुछ एक साथ।
शिक्षा और साहित्य की ताकत कैसे ये हमें नई दुनिया दिखा सकते हैं, हमें आजाद कर सकते हैं।
अपनी कहानी कहने का महत्व भी, कैसे दर्द को कला या समझ में बदला जा सकता है।
और ये एहसास कि सबसे अमानवीय परिस्थितियों में भी इंसान अपनी गरिमा बचाए रख सकता है, ये बहुत बड़ी बात है।
ये सारे सबक आज भी उतने ही मायने रखते हैं, मुझे लगता है।
बिल्कुल। मुश्किलों से लड़ना, उलझे हुए पारिवारिक रिश्तों को समझना, बेहतर मौकों की तलाश, पढ़ाई का महत्व, निराशा में उम्मीद खोजना, ये सब हम सबकी जिंदगी का हिस्सा हैं किसी ना किसी रूप में।
हाँ, और मैकॉर्ड की कहानी ये भी दिखाती है कि अपनी कहानी सुनाकर हम अपने जख्मों को भर सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं।
सही बात है।
चलिए इस गहरी और भावनात्मक चर्चा को तीन खास बातों के साथ समेटते हैं। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, एन इमोशनल इनसाइट।
मेरे लिए सबसे गहरी भावनात्मक बात यह है कि एक ऐसे पिता मिलांची सीनियर से प्यार करना कितना मुश्किल और विरोधाभासी हो सकता है। फ्रैंक के मन में अपने पिता के लिए वो जो प्यार, दया, शर्म, गुस्सा, इन सब का मिला जुला भाव है, और आखिर में जो करुणा उभरती है वो दिल को छू जाती है। ये दिखाती है कि पारिवारिक प्यार कितना उलझा हुआ और शायद शर्तों से परे भी हो सकता है।
बहुत गहरा। दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि,
एन इंटेलेक्चुअल इनसाइट।
बौद्धिक स्तर पर मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात है कहानी कहने का तरीका। मैकॉर्ड ने एक बच्चे के नजरिए से लिखा वर्तमान काल में, और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वो नजरिया भी बड़ा होता जाता है, मैच्योर होता जाता है। इस तकनीक से क्या होता है कि भयानक बातें भी पढ़ने लायक बन जाती हैं, दर्द कला में बदल जाता है।
हाँ, ये बहुत खास है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ क्या कहा गया ये जरूरी नहीं, कैसे कहा गया ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नजरिया और शैली ही अर्थ का निर्माण करते हैं।
बिल्कुल सही। और अंत में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि,
अ
यूनिवर्सल इनसाइट, जो हम सबके काम आ सकती है।
हाँ, वो सार्वभौमिक सबक ये है कि जीवन का मतलब ही शायद यही है, दुख और तकलीफ के बीच सुंदरता और अर्थ खोजना, जिसे शायद हम राख में सौंदर्य कह सकते हैं।
वाह। मैकॉर्ड हमें याद दिलाते हैं कि दयालुता के वो छोटे छोटे पल, कविता की कोई पंक्ति, किसी के साथ बांटा गया खाना, यही वो चीजें हैं जो अंधेरे में रोशनी देती हैं, हमारी आत्मा को जिंदा रखती हैं। ये सिखाता है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी जीवन की छोटी छोटी खुशियां, अनुग्रह के वो क्षण, हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकते हैं।
बहुत खूब।
राख में सौंदर्य।
हाँ।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।